Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में जो पीर की शाम को हुआ करती है रमजान मुबारक के अलावा बाकी 11 महीनों में अल्लाह की तौफीक से, तो उसमें हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ रहे हैं मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 से। रमजान मुबारक में जो क्लासेस चल रही थी वो सूरह अनआम की तफसीर हमने कंटिन्यू करी थी, जो कि खवातीन की क्लास में पीर की सुबह को हुआ करती है। आज सुबह भी अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास हो गई। आज यही सोच रहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग भी मर्दों के ग्रुप के ऊपर शेयर कर देते हैं, जो रमजान मुबारक में फॉलो कर रहे थे सूरह अनआम की तफसीर, अगर वो चाहेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग गाड़ी ड्राइव करते हुए सुन लेंगे। ठीक है, इसलिए कि घर में बैठ करके सुनना मुझे भी पता है कि मुमकिन नहीं होता, तो इस वजह से साजिश ने भी जो भी रिकॉर्डिंग सुनी वो गाड़ी ड्राइव करते हुए सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ। तो इस क्लास में तो मर्दों वाली क्लास में सूरह मायदा की आयात चल रही थी रमजान मुबारक से पिछली क्लास से पहले, और इन आयात की खुलासा तफसीर हम पढ़ना शुरू कर चुके थे। पहले पेज पर थे पेज नंबर 86 मारूफ कुरान की जिन नंबर 3 का पेज नंबर 86 था। तो खुलासा तफसीर में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये उनकी तफसीर बयान और कुरान से हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर नकल फरमाया, तो उसमें हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर में फरमाया था कि ए अहले किताब यानी यहूद व नसारा, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं जिनके कमाल इल्मी का तो ये हाल है कि किताब के मजामीन से जिन चीजों को तुम छुपा लेते हो, इनमें से बहुत सी बातों को जिनके इजहार में कोई शरी मसलहत हो, जाहिरन तहसील उलूम ना फरमाने के बावजूद खालिस वही के जरिए वाकिफ होकर तुम्हारे सामने साफ साफ खोल देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन महीने से ज्यादा गुजर चुका है, तो इस वजह से आज इस दोबारा पढ़ रहा है। बाकी तफसील इसकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है उस क्लास की, तो अभी अगर समझ में ना आए कोई बात फिर आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो तुम्हारे सामने साफ साफ खोल देते हैं वो इन बातों को जो तुम छुपाते हो, और कमाल इल्मी और इखलाकी का ये कमाल अमली होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो क्योंकि कमाल इल्मी का तो बात हो गई ना ऊपर, कमाल इल्मी का तो यह हाल है कि वो उन मजामीन को जिनको तुम छुपाते हो उनको भी बयान कर देते हैं, हालांकि इन्होंने किसी उस्ताद से इल्म हासिल नहीं किया। और कमाल अमली व अखलाकी, ठीक है, क्योंकि अमल अखलाक अखलाक भी अमाल में ही आते हैं,
तो कमाल अमली व अफलाकी का ये आलम है कि जिन चीजों को तुमने छुपा लिया था, इनमें से बहुत से उमूर को जानने और बाखबर होने के बावजूद अखलाकन उनके इजहार से दरगुजर फरमाते हैं। ठीक है, यानी हर चीज तुम्हें तुम्हारे मुंह पर नहीं मारते, बल्कि जिस चीज की जरूरत होती है वही बताते हैं। जबकि उनके इजहार में, यानी वो बातें नहीं बताते कि जिनके इजहार में कोई शरी मसलहत ना हो, यानी बिला वजह बातें नहीं बोलते, बल्कि जब शरी मसलहत होती है तो वो बातें बताते हैं। तो कोई ऐसी बात जिसमें कोई शरी मसलहत ना हो बल्कि सिर्फ तुम्हारी रुसवाई ही होती हो, वो बातें उनसे दरगुजर कर देते हैं। और ये कमाल इल्मी दलील नबूवत है, और कमाल अखलाकी उसका मुअय्यद और मुअक्कद, यानी इल्मी कमाल जो है ना, ये दलील नबूवत है। असल दलील नबूवत क्या है? इल्म का कमाल। ठीक है, क्योंकि इल्म जो है ना, ये बुनियाद होती है, और अमल जो है ये उसके ऊपर बनता है, उसके ऊपर, यानी इल्म होता है तब उसके ऊपर अमल होता है। तो बुनियाद अमल नहीं होती, अमल बुनियाद नहीं होता, बुनियाद क्या होता है? इल्म होता है। अमल जो है फिर उसके ऊपर उसको मजीद एम्फेसाइज कर देता है, उसको मजीद जो है ना वो ताकीद उसकी कर देता है, उसको एस्टैब्लिश कर देता है इनको मजीद। ठीक है, इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मुइज्जात के अलावा खुद तुम्हारे साथ आपका ये बर्ताव आपकी नबूवत साबित करने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये इल्मी नबी अलैहिस्सलाम के इस इल्मी कमाल और अमली कमाल, इसको अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए हुज्जत बनाया। ठीक है, इल्मी कमाल और अमली कमाल, इसके जरिए से नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने प्रूफ कर दिया इन काफिरों के सामने कि ये अल्लाह के नबी हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि चांद के दो टुकड़े करवा के अल्लाह ने प्रूफ किया, शक्ल कमर के जरिए से अल्लाह ने प्रूफ किया, और हम समझते हैं कि पत्थर ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, इसके जरिए से अल्लाह ताला ने प्रूफ किया। नहीं, ये मोजजात तो बाद में आए, राइट? ऐसा नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम चलते हुए तशरीफ लाए मक्का मुकरमा के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पत्थर चल रहे थे जो कि कलमा पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम के नाम की तस्बीह पढ़ रहे थे, और चांद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम उंगली से जो है वो चांद को इशारा किए चले जा रहे थे और चांद टूटा चला जा रहा था। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बात मान लो। हम ये समझते हैं कि ऐसे मुआजात हुए तो इससे नबूवत प्रूव हो गई, लेकिन हम गलत समझते, क्योंकि ये मुआजात तो बाद में हुए और बहुत कम लोगों के सामने हुए। तो फिर क्या प्रूफ था नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का? नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का क्या प्रूफ था? कोई दलील होनी चाहिए ना। हमारे सामने कोई शख्स आ जाए कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता हो, तो भाई वो कोई कुछ प्रूफ दे ना अपनी अपने सदाकत का, अपने जो है वो बात के सही सही होने का कोई प्रूफ दे ना, तब आप उसकी बात सुनेंगे ना। ऐसी तो नहीं खामखा आप सड़क पे चलते हुए किसी शख्स के क्लेम को जो है वो मानना शुरू कर देंगे। भाई प्रूफ चाहिए होता है ना इंसान को, प्रूफ के बगैर बात नहीं होती है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या प्रूफ लेकर के आए? नबी अलैहिस्सलाम कमाल इल्मी और कमाल अमली, ये प्रूफ लेकर के आए। ठीक है ना, चांद को टुकड़े करने वाला प्रूफ लेके नहीं आए, वो बाद में आया। ठीक है, तो असल बात फिर क्या बनी? कमाल इल्म और कमाल अमल। तो अगर हमने भी किसी से बात करनी है ना, तो हमें भी पहले इल्म हासिल करना होगा और अपने अमल को फिर सही करना होगा, तब हम किसी से बात कर सकते हैं। जहालत के साथ हम किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को नहीं कह सकते कि भाई तुम मेरी बात मान लो और तुम जो है वो उस तरह से चलना शुरू हो जाओ जिस तरह से मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम चलो। नहीं, इल्म और अमल के बगैर ये दोनों काम नहीं हो सकते। जब नबी ने ये काम नहीं किए ऐसे, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? ये बात हमें समझ में आ जाए तो फिर बात ही सारा मसला ही हल हो जाए, लेकिन हम तो कहते नहीं, नबी ने बेशक ना किया हो लेकिन मैं फिर भी करूंगा, मैं फिर भी करूंगा, चाहे नबी ने ना किया हो मैं तो फिर भी करूंगा। नबी ने अपने घर से काम शुरू किया, मैं अपने घर से काम शुरू नहीं करूंगा। नबी ने इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बाप से काम शुरू किया, मैं अपने अब्बू से काम शुरू नहीं करूंगा, मैं तो जो ना वो अपने यूनिवर्सिटी से काम शुरू करूंगा। मैं तो जो ना वो अमेरिका से काम शुरू करूंगा, मैं तो जो है वो इंटरनेट से काम शुरू करूंगा, सोशल मीडिया से काम शुरू करूंगा, घर से नहीं काम शुरू करूंगा। बेशक नबी ने अपने घर से शुरू किया, वो मैं नहीं करूंगा। अब ये हमारा ये हाल है हमारे ईमान का, और हम अपने आपको बहुत बड़ा ईमान वाला समझते हैं। हालांकि ईमान तो ये होता है नबी अलैहिस्सलाम की बात पे एतमाद करना, नबी अलैहिस्सलाम की बात के तरीके को कामयाबी का तरीका समझना, ये ईमान होता है। हम दीन का काम भी करते हैं ना तो ईमान के बगैर, पता नहीं किस चीज को हमने ईमान समझ के रखा हुआ है। तो बहरहाल ये बात हुई थी, और भी बहुत सारी बातें होंगी। वो बात है कि ये कमाल इल्मी दलील नबूवत है, और कमाल अखलाकी उसका मुअय्यद और मुअक्कद है। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मौजजात के अलावा खुद तुम्हारे साथ आपका ये बर्ताव आपकी नबूवत साबित करने के लिए काफी है। ठीक है, तो दूसरे मौजजात तो बाद में आए थे ना, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान वालों को बुलाया था, तो वहां पर तो नहीं कोई इस किस्म का मुआवजा दिखाया था। उस वक्त तो कमाल अखलाकी उन लोगों के सामने पेश किए थे ना अपनी दलील के तौर पर, राइट। और इसी रसूल के जरिए तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन चीज आई है, और वो एक किताबे वाज़ह है। ठीक इन्होंने दिखाया है कि हजरत कभी ऐसा लगता है कि घर वालों के मुकाबले में दूसरों से बात करना ज्यादा आसान है, कभी ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि घर वालों से बात करना मुश्किल काम होता है। ठीक है, लेकिन करना तो है ना, मुश्किल तो लगता है लेकिन फिर भी करना तो है ना। फिर ये बात भी हो चुकी है कि जब आप घर वालों से बात करेंगे तो फिर वो आपको ठेंगा दिखाएंगे, वो आपको जो है ना वो यानी डिसरिगार्ड करेंगे, और जब वो डिसरिगार्ड करेंगे तो फिर आप बाहर वालों से बात करेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर आप जो है वो बाहर वालों से बात करेंगे, लेकिन ये तरतीब उलटने से काम नहीं चलेगा कि नहीं मैंने तो घर वालों से बात ही नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ बात हुआ बाहर वालों से बात करनी, ये तरतीब नहीं चलेगी। ठीक है, तो घर वालों से बात करें ताकि आपके भी थोड़े से नफ्स की जो है ना वो इस्लाह हो, इससे बड़े नफ्स की इस्लाह होती है जब घर वाले ही ठेंगा दिखाते हैं ना, तब नफ्स की इस्लाह होती है दाई साहब के, और उनके नफ्स की इस्लाह ना हो तो फिर उन्होंने क्या दीन का काम करना। तो बहरहाल तो क्या हुआ फिर कि आपका ये बताओ आपकी नबूवत साबित करने के लिए काफी है। अच्छा, तो ये एक रोशन चीज आई है ना तुम्हारे पास, अल्लाह की तरफ से एक रोशन चीज आई, वो क्या है रोशन चीज? और वो एक किताबे वाज़ह है कि उसके जरिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रजाए हक के तालिब हों सलामती की राहें बतलाते हैं। ठीक है, अच्छा, घर वालों के साथ बात करना मुश्किल क्यों होता है, ज्यादा मुश्किल क्यों होता है ना, उसकी वजह एक ये भी होती है, एक तो ये होती है ना कि घर वाले जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर की वजह से आपकी बात नहीं सुनते, और एक और भी तो बहुत बड़ी वजह होती है ना, वो ये होती है, क्या होती है भाई, अगर आपसे पूछें कि घर वालों से क्यों हम बात नहीं करना चाहते, उसकी वजह क्या होती है, एक तो हो गई ना घर की मुर्गी दाल बराबर, आप मुर्गी हैं लेकिन घर वाले आपको दाल कह रहे हैं, दूसरी वजह क्या होती है? बिल्कुल यही वजह है कि उन्हें हमारी असलियत पता होती है, और हमें ये बात पता होती है कि उन्हें हमारी असलियत पता है, उन्हें हमें ये बात पता होती है कि हम कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, कितने फरेबी हैं, राइट। हमारे घर वालों को ये हमारी बात पता है हमारे बारे में, ठीक है ना, तो इस वजह से बात ही नहीं करते उनसे, इसलाह तो अपनी करनी नहीं है। तो ऐसा इसका आसान हल क्या है कि बात ही ना करो उनसे भाई, आसान हल इसका ये नहीं है कि उनसे बात ही ना करो, आसान हल ये है कि अपनी इसलाह करो, अपने आप को सच्चा और सुच्चा बनाओ, ठीक है ना, ये आसान हल है। क्यों ये आसान हल है, बाहर तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आसान हल क्यों है? क्योंकि इसी के जरिए से फिर हम भी पिटाई से बचेंगे, नहीं, इसी के जरिए से हम भी पिटाई से बचेंगे, क्योंकि हम जो गुनाह कर रहे हैं तो उसकी पिटाई हमें नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना, तो पिटाई से बच जाना ये आसान बात है कि नहीं है? तो पिटाई से बचना अपने लिए भी अपने इस्लाह के जरिए से ही होगा, और घर वालों को पिटाई से बचाना यानी गुनाह जो वो कर रहे हैं तो उनको पिटाई से बचाना वो भी इसी रास्ते से होगा। ठीक है, अब हम समझते ही नहीं कि भाई गुनाह पे पिटाई होती है, हमें हमें इस बात का इतमाद ही नहीं, हमें इस बात का यकीन नहीं कि गुनाह करेंगे तो पिटाई होगी, तो बस फिर तमाशे चल रहे हैं, और ये सारे तमाशे हैं फिर बगैर ईमान के ही जो है ना वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। ईमान ही कोई नहीं है, दीन का काम करे चले जा रहे हैं। कौन से दीन का काम कर रहे हैं पता नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग नहीं कर रहे, अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपने दीन की तबलीग नहीं करनी है, अल्लाह के दीन की तबलीग करनी है। और अल्लाह का दीन जो है ना वो तो इस एतमाद पर इस्टैब्लिश होता है कि गुनाह करने पर पिटाई होती है। ठीक है, तो फरमाए कि ये किताब वाज़े है कि उसके जरिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रजाए हक के तालिब हों, रजाए हक के तालिब हों यानी बेतालिब ना हों, सलामती की राहें बतलाते हैं, ऐसे लोगों को सलामती की राहें बतलाते हैं यानी जन्नत में जाने के तरीके, जो खास अकायद व आमाल हैं तालीम फरमाते हैं कुरान के जरिए से, खास अकायद व आमाल जो जन्नत में जाने के लिए जरूरी हैं उनकी तालीम फरमाते हैं। क्योंकि दर हकीकत मुकम्मल सलामती तो जन्नत ही में हो सकती है, कि इसमें कोई कमी होती है और ना जवाल का खतरा। दुनिया के अंदर मजे उड़ा लिए तो वो तो फिर खत्म हो जाएंगे ना, किसी वक्त भी खत्म हो सकते हैं। एक बम आके गिर गया ऊपर से नीचे, सब खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है ना। या जरा सा एक फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस आ गया, तभी जो बैंक के अंदर पड़े हुए थे जहां बम नहीं गिरा था, घर पे बम गिरा था तो घर खत्म हुआ, चलो बैंक में तो जो चीजें थी वो बाकी रहेगी ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा बैंक की चीजें भी सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो दुनिया के तो जो मजे उड़ा रहे हैं उनका तो कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाने वाले हैं वो। ठीक है, तो जन्नत में मिलेगी भाई मुकम्मल सलामती, दुनिया में नहीं मिलने वाली है। लोग लगे हुए हैं दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में, नहीं दुनियादार भी लगे हुए हैं कि दुनिया जन्नत बन जाए, और दीनदार भी लगे हुए हैं कि दुनिया जन्नत बन जाए, नहीं? गलबा आ जाए, गलबा गलबा बन जाए इसी तरह, दुनिया दुनिया में जो है वो दीन का गलबा आ जाए। वो क्यों गलबा आ जाए भाई, कैसे गलबा आ जाए भाई, है तुमने तो ना खुद दीन पे अमल करना है, ना जो है वो दीन को समझना है, ना इल्म हासिल करना है, बस दीन का गलबा आ जाए, पता भी कुछ नहीं है कि दीन होता कि क्या चीज है, अपना और बस दीन बनाया हुआ है और उसी दीन को दुनिया में गालिब करने की फिक्र में लगे हुए हैं, बस बस फिक्र ही में लगे हुए, करना वरना तो वैसे भी कुछ नहीं है उनको, दूसरों को तनकीद करना है, उलमा पे तनकीद करनी है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते, है ये इनका दीन का गलबा लाने का ये सारा तरीका है कि उलमा पे तनकीद करते रहो, वो ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, वो क्यों करते। लेकिन ये दुनिया में दीन का गलबा जो है ना, ये जो ये साथियों से बात हो रही थी अभी 2-3 दिन पहले, ये एक हड्डी है जो कि हलक में अटक गई है, किसी तरह दुनिया में दीन का गलबा आ जाए, हालांकि दीन की अलिफ बे भी नहीं पता इस शख्स को। ठीक है, तो ये भी दुनिया दुनिया की मोहब्बत ही है और कुछ नहीं है ये। बहरहाल शैतान ने जो है वो ऐसे से धोखे दिए हुए हैं, पता है वो उसका ही काम भाई धोखे देना। तो रजाए हक के तालिब हो, ठीक है, रजाए हक, हक जो है ना वो ये है कि आखिरत समझ जाए, तो सलामती की राहें बतलाते हैं अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से यानी जन्नत में जाने के। ठीक है, जो खास अकायद व अमाल हैं तालीम फरमाते हैं, क्योंकि दर हकीकत मुकम्मल सलामती तो जन्नत ही में हो सकती है, कि ना उसमें कोई कमी है और ना जवाल का खतरा। दुनिया में तो जवाल ही जवाल है भाई, हर हर चीज को जवाल है दुनिया के अंदर। अच्छा, और उनको अपनी तौफीक से यानी अल्लाह ताला अपनी तौफीक से कुफ्र व मासियत की तारीकियों से निकालकर ईमान व ताअत के नूर की तरफ लेकर आते हैं, और उनको हमेशा राह रास्त पर कायम रखते हैं। मुस्तकीम, मुस्तकीम क्या है, इस्तकामत वाला रास्ता, यानी जिस रास्ते के ऊपर डट जाए ना बंदा वो सिरात मुस्तकीम होता है, और जिस पे वो डटा ही हुआ ना हो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो सिरात मुस्तकीम नहीं है। ठीक है, यानी कभी गुनाह कर रहा है, कभी नेकी कर रहा है, कभी शिर्क कर रहा है, कभी जो है वो तौहीद की बातें कर रहा है, तो मतलब यह है कि ये बंदा सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। सिराते मुस्तकीम तो वो होता है जिसके ऊपर बंदा इस्तकामत के साथ खड़ा रहे, वो कैसे मिलेगा भाई, सिराते मुस्तकीम कैसे मिलेगा, वो तो फिर कैसे मिलेगा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, कि तुम जब अल्लाह के दीन वालों की मदद करोगे तब तुम्हें जो है ना वो अल्लाह की मदद मिलेगी और तब अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों को जमाएगा इस दीन के ऊपर, तब तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिलेगा। और जब तक तुम उनकी बातों को इग्नोर करते रहोगे और अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक जो है वो अपने दीन के ऊपर चलते रहोगे तो उस वक्त तक तुम्हें सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगा, तुम्हारे पैर जो है वो मुतजलजल ही रहेंगे, तुम्हारे पैर मुतजलजल ही रहेंगे, तुम इस्तेकामत के साथ दीन पर नहीं चल सकोगे जब तक तुम दीन वालों की मदद नहीं। इग्नोर करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी जाया होती रहेगी और इसी तरह से किसी दिन तुम्हें मौत आ जाएगी। तो ये जो है ना, ये अपनी तौफीक से तुझको मासियत की तारीकियों से निकाल कर ईमान उत के नूर की तरफ लेकर आते हैं और उनको हमेशा राह रास्त पर कायम रखते हैं। तो ये शर्त है, ये मशरूत है, ये चीज शर्तिया है ये, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे। अल्लाह ताला से कोई हमारी मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह वालों को मदद की जरूरत है क्योंकि वो इंसान होते हैं, वो रब नहीं होते, वो परवरदिगार नहीं होते, वो खुदा नहीं होते, वो इंसान होते हैं, उनको मदद की जरूरत होती है और अल्लाह ताला ने उनकी मदद के साथ मशरूत कर दिया कि अल्लाह तुम्हारी मदद उस शर्त पर करेगा जब तुम उनकी मदद। तो राह रास्त पर अल्लाह ताला पाए, बिलाशुबा वो लोग काफिर हैं जो यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला ईसा मसीह इब्ने मरियम। आप उनसे यूं पूछिएगा कि अगर ऐसा है तो बतलाओ, अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम, जिनको तुम अल्लाह का ऐन समझते हो, उनसे पूछिए कि अगर ऐसा है तो बतलाओ, अगर शर्तिया, ठीक है, मीनिंग जुमला शर्तिया से क्या चीज बनती है, लॉजिक बनती है, लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल प्रूफ दे रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर ऐसा हो तो बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम है जिनको तुम अल्लाह का ऐन समझते हो, वो उनका एक फिरका अल्लाह का ऐन समझ, यानी अल्लाह और मसीह नऊजुबिल्लाह इक्वल है, एक ही चीज है, उनका एक फिरका ऐसा समझता था, जैसे हमने पिछले पेज के ऊपर तफसीर में पढ़ा था, पेज नंबर 84 के बिल्कुल आखिर के अंदर, ठीक है, फिरका याकूबिया ईसाइयों का, जो खुद ईसा अलैहि सलाम को खुदा के साथ मुत्तहिद मानते थे, ठीक है, और उनकी वालदा, तो क्या अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम और उनकी वालदा हजरत मरियम को और जितने जमीन में आबाद हैं उन सबको मौत से हलाक कर देना चाहें तो क्या कोई शख्स ऐसा है कि जो खुदा ताला से जरा भी उनको बचा सके, ठीक है, क्या कोई ऐसा है जो, यानी इतनी बात को तो तुम भी मानते हो ना कि उनको हलाक करना खुदा की कुदरत में है, तो जिस जात का हलाक करना दूसरे के कब्जे में हो वो खुदा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला इज यूजिंग देयर स्टेटमेंट्स अगेंस्ट देम, उनका अपना कौल जो है ना वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपना कौल जो कहा वो कैसे कहा, अल्लाह ने कहलवाया, क्या बात हुई थी पीछे पिछली क्लासेस के अंदर कि अल्लाह ताला काफिरों से ब्लंडर्स करवाते हैं, क्यों करवाते हैं ये आप बता दें, अल्लाह ताला काफिरों से ब्लंडर्स करवाते हैं, क्यों ब्लंडर करवाते हैं अल्लाह ताला काफिरों से, ये ब्लंडर करवा दिया ना अल्लाह ताला ने उनसे, कि उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई इनको भी तो हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है, ठीक है ना, ये किसी वक्त उन्होंने ये बात कह दी, तो अल्लाह ताला ने उनसे बात कहलवाई, तभी तो उन्होंने ये बात कही ना, तो क्यों अल्लाह ताला ने उनसे ये मैसअप करवाया, ये ब्लंडर क्यों करवाया, इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी फॉर व्हाट, सही है, इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट, और जाहिर है प्रॉफिट के साथ फिर वो उनको मानने वाले मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नबियों को फतह अता फरमा, ये फतह जो होती है दो तरह की होती है, एक इंटेलेक्चुअल फतह होती है और एक जो है वो दुनियावी मादी फतह होती है। मादी फतह तो किसी को मिली किसी को नहीं मिली, किसी प्रॉफिट को मादी फतह मिली काफिरों के ऊपर, यानी वो तस्खीर कर लिया, इलाका फतह कर लिया, हुकूमत कायम कर ली, लेकिन किसी प्रॉफिट को नहीं मिली, लेकिन जो अकली फतह है या इल्मी फतह है, ये तो हर प्रॉफिट को मिलेगा, हर प्रॉफिट। वो कैसे मिली? अल्लाह ताला ने ब्लंडर करवाया काफिर से, ठीक है, अल्लाह ताला ने काफिर से ब्लंडर करवाया और फिर प्रॉफिट को इसके जरिए से फतह मिली, क्योंकि अल्लाह ही ये काम करते हैं, प्रॉफिट्स भी ये काम नहीं कर सकते, है ना। मकरू वो मकर अल्लाह, वो मकर करते हैं यानी काफिर मकर करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके खिलाफ मकर करता है, प्रॉफिट्स मकर नहीं करते उनके खिलाफ, प्रॉफिट्स तो वो करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है बस, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं वो प्रॉफिट करते हैं, उसके अलावा इधर उधर नहीं करते। इत्तबे मा यूहा इलैक, आप इत्तबा करें उस चीज की जो आपकी तरफ वही की गई है, प्रॉफिट्स इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो मकर तो फिर यानी उनके खिलाफ प्लानिंग तो अल्लाह कर रहा होता है, अल्लाह ही उनको जो है वो शिकस्त दे रहा होता है, अल्लाह ही को उनके सारे मंसूबों का भी पता होता है, सारी जो है वो मकारियों का भी पता होता है और उनके सारी हरकतों का भी पता होता है, ठीक है ना। और ये पहले पता होता था, अब नहीं पता होता ना उसके, है ना, अब तो नहीं पता होता, पहले अल्लाह को पता होता था, अब नहीं पता होता, क्या ख्याल है? अब भी पता होता है। अच्छा, आज तो मुसलमान को सारी प्लानिंग खुद करनी पड़ रही है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो अल्लाह प्लानिंग करते थे और कहते भी थे कि यम करू वयम करू वयम करुल्ला वयम करू ना वयम करुल्ला है। अब जो है वो बेचारे मुसलमानों को खुद प्लानिंग करनी पड़ती है काफिरों के खिलाफ, अल्लाह नहीं करता प्लानिंग काफिरों के खिलाफ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी अल्लाह ही करता था और आज भी अल्लाह ही करता है, पहले भी अल्लाह ही करता था और आज भी अल्लाह ही करता है। मुसलमान ही ऐसे बन जाएं जो कि अल्लाह ताला को नाकिस समझना शुरू कर दें, तो फिर जाहिर है मुसलमानों की तो मदद नहीं होती ना, तो इसी वजह से बेचारों को खुद से प्लानिंग करनी पड़ती है सारी की सारी बेचारे, क्योंकि अल्लाह पर तो एतमाद खत्म हो गया। क्यों एतमाद खत्म हो गया? क्योंकि अल्लाह की माननी नहीं है, अपनी गद्दी बचाने के लिए अगर कुछ इस्लाम इस्लाम करना शुरू भी हो जाए, वो गद्दी बचाने के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह की रजा के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपनी गद्दी बचाने के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी फिर? अल्लाह की मदद तो है इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, भाई आमाल का दारोमदार नियतों पर है, और जो जिस चीज की नियत करेगा उसको वही मिलेगा, ठीक है। अल्लाह की मदद की नियत तो नहीं करी ना, गद्दी बचाने की नियत कर रहे हैं और उसके लिए दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं और अपने साथ जो है वो कर रहे हैं तमाशे कर रहे हैं। अल्लाह की मदद की नियत करोगे तब अल्लाह की मदद आएगी, उसके बगैर नहीं आने वाली है, लेकिन मसला यह है कि उसके लिए गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए फहाशी और औरियानी और बदबख्ती और कमबख्ती को जो है वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है, तौबा करनी नहीं है, अपनी औरतों को जो है वो नचाने वाली हरकतों से जो है वो बाज नहीं आना है। अब दीन दीन के जो तुमने ढोल पीटे हुए हैं, इस ढोल पीटने से तो अल्लाह की मदद नहीं आती ना, समझ में आ रही है कोई बात? नहीं समझ में आ रही, अल्लाह समझा दे, हम कौन होते हैं समझाने वाले, ठीक है। तो दीन का ढोल पीटने से अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद जो है वो अल्लाह को राजी करने से आती, और उसके लिए जो है ना वो अपनी बदबख्तियों को छोड़ना पड़ता है या कम अज कम उसके ऊपर नादिम होना पड़ता है, ठीक है ना। पहले कभी नादिम हुए थे वो, लोगों को साथ मिला करके जो तमाशे किए, खत्म हो गए वो तमाशे, फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद खत्म हो गए वो सारे के सारे तमाशे, अब फिर वही तमाशे करने की कोशिश कर रहे हैं, तौबा किए बगैर, तौबा किए बगैर नजर आ रहा है ना कि अब हमारी बारी आने वाली है, अब हमारी बारी आने वाली है, अब नजर आना शुरू हो गया ना, फिर वही पहले की तरह, पहले भी नजर आ रहा था कि हमारी बारी आने वाली है, बराबर तक पहुंच गए हैं, अब हमारी बारी आने वाली है, तो मिला लिया था साथ कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ मौलवियों को साथ मिला लिया था, कुछ जो है वो सादे लोगों को साथ मिला लिया था, जब नजर आना शुरू हो जाता ना कि अपनी जान से आने वाली, तो ये तरीका नहीं होता भाई, ये अल्लाह को डिनाई करके जो है ना वो, अब आप नहीं चल सकते इस तरीके से, अल्लाह पाक की समझ अता करते हैं, तौबा करने की तौफीक अता करते हैं अपनी बेवकूफियों से। तो फरमाते हैं कि जी इससे अकीदे उलूहियत मसीह का बातिल हो गया, अकीदा उलूहियत मसीह का बातिल हो गया। मसीह अलैहिस्सलाम को जो ये अल्लाह कहते थे या अल्लाह जैसा कहते थे या अल्लाह का जो है वो बेटा कहते थे, ये सारा अकीदा इससे बातिल हो गया। तो और जो हकीकतन खुदा और सबका माबूद है यानी अल्लाह ताला, उसकी ये शान है कि उस ही के लिए खास है हुकूमत आसमानों पर और जमीन पर और जितनी चीजें इन दोनों के दरमियान हैं उन पर। किताब में तो लिखते हैं, पढ़ भी लेते हैं, किताब में तो पढ़ लेते हैं, लिखने वाले तो यकीन भी रखते थे इन बातों पर। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को तो यकीन भी था इस बात पर, लेकिन हम जो है ना बस किताब में से पढ़ते हैं और दरस कुरान की क्लास में सुन लेते हैं या इज्तिमा में सुन लेते हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ के साथ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि अल्लाह ही के लिए खास है हुकूमत। हुक्म तो अल्लाह का चलता है जमीन पर भी आसमान पर भी और जितनी चीजें दोनों के दरमियान है सिवाय हमारे, क्योंकि हम तो आसमान और जमीन के दरमियान में नहीं रहते, पता नहीं कहाँ रहते हैं। हमारे ऊपर अल्लाह का हुक्म नहीं चलता, बाकी सब पे चलता है। अल्लाह की तरफ मकर के लफ्ज की बजाय तदबीर का लफ्ज शायद बेहतर होगी, या आज कुरान मजीद के अल्फाज बयान कर रहा था, ठीक है, और सुनने वालों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा कि वो कुरान मजीद के अल्फाज मैंने अपनी तरफ से आयत ही बनाई ना, ठीक है। तो उर्दू जुबान और अरबी जुबान दोनों का ठीक है, तदबीर का लफ्ज बेशक बेहतर तो है उर्दू जुबान के साथ, लेकिन हमने तो कुरान की आयत पढ़ी थी ना आपके साथ, तो और जमीन पर जितनी चीजें दोनों के दरमियान हैं उन पर और वो जिस चीज को जिस तरह चाहें पैदा कर दें, और अल्लाह ताला को हर चीज पर पूरी कुदरत है, अल्लाह ताला को हर चीज पर पूरी कुदरत है। और यहूद और नसारा दोनों फरीक दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब, हम सब यानी वो सब अपने बारे में, यानी कि एक अल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा। तो यहां पर अल्लाह का बेटा कहने का क्या मुराद, वैसे तो यहूदियों का एक फिरका जो है वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और ईसाई जो है वो तकरीबन सारे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, तो अब यहां पर नहनु अबना उल्लाह का क्या मतलब। तो यहां पर लफ्ज अबना का मतलब क्या इनका था, ये अपने आप को अल्लाह का हकीकी बेटा नहीं कहते थे बल्कि महबूब, कि जैसे बेटा महबूब होता है वैसे हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, अहिब्बाहु। अल्लाह ताला ने खुद ही इसकी वजाहत जो है वो फौरन अगले जुमले के अगले लफ्ज के अंदर फरमा दी कि हम उसके महबूब, मतलब ये मालूम होता है हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने, ठीक है, कि भाई ये मतलब मालूम होता है कि सराहतन नहीं लिख रहे लेकिन कराइन से यही बात साबित होती है कि हम चूंकि अंबिया की औलाद हैं इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ हमारी एक खसूसियत है कि हम गुनाह भी करें तो उस पर इतनी नाराजगी नहीं होती जितनी दूसरों पर होती है। जैसे बाप को अपने बेटे की नाफरमानी पर इतना असर नहीं होता जितना किसी गैर आदमी के ऐसे ही फेल पर होता है। तो अल्लाह के वलियों नबियों की औलाद तो ये थे, हकीकत में ये थे वलियों की और नबियों की औलाद थे, ठीक है, तो बनी इसराइल। तो इस बुनियाद पर जो है ना वो इस तो के जैसे हम अल्लाह के महबूब बनते हैं इस तरह से वो कहते थे। तो अब जो है ना वो अपनी तरफ से फिर मफरूजा ही बनाया हुआ है कि अपने जिस तरह बाप को अपने बेटे की नाफरमानी पर इतना असर नहीं होता जितना किसी गैर आदमी के ऐसे ही फेल पर होता है, उनके इस ख्याल बातिल के इब्ताल के लिए यानी उसको बातिल साबित करने के लिए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है कि आप उनसे पूछिए कि अच्छा फिर तुमको तुम्हारे गुनाहों के इवज आखिरत में अजाब क्यों देंगे जिसके तुम भी कायल हो, जैसे कि यहूद का कौल था लन तमस्सन नारु इल्ला अय्याम मादूदा, यानी अगर हमें अजाब जहन्नुम हुआ भी तो चंद रोज ही होगा, अगर हमें हमें अजाब जहन्नुम हुआ भी, ठीक है। तो मफहूम हजरत ने यहां पे बयान किया है, वरना जो उनके अल्फाज कुरान मजीद ने नकल किए हैं कि हमें नहीं होगा अजाब जहन्नम जहन्नुम या आग का अजाब सिवाय चंद रोजा के, क्योंकि इनको भी अपनी हरकतों का तो पता था ना, ठीक है, कि ये क्या तमाशे करते फिर रहे हैं, कुरान वो इनके जो तौरात के अंदर अहकामात हैं ये उन अहकामात को तोड़ रहे हैं, ये अपने आवाम को नहीं बताते थे हकीकत, लेकिन खुद तो पता होती है ना इंसान को कि वो क्या हरकत कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इनको ये था कि हमें ना जहन्नुम की आग ने छूना है, हमें जहन्नुम की आग, हमें हमें अजाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम हमारी जो जद्दी पुश्ती, हम जद्दी पुश्ती है ना, हमारा खानदान अच्छा है, हमारे बाप दादा अच्छे हैं, यानी नबी थे और जो है वो वली थे और वो नहीं करते थे हमारी जैसी बस्तियां, ठीक है। तो हमें अल्लाह का अदाब जो है ना वो मिलेगा तो सही, लेकिन चंद दिन के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये उलमा होते थे ना, ये बनी इसराइल वाले उलमा, ये हमारी तरह के अवाम नहीं होते थे। अवाम का मामला क्या होता है कि अवाम को इल्म ही नहीं होता, यही तो फर्क होता है अवाम में और उलमा में। वॉट मेक्स द डिफरेंस कि भाई चार आंखें, आलिम की चार आंखें होती हैं, आम आदमी की दो आंखें होती हैं, ये फर्क है दोनों में, उसके दो हाथ होते हैं, उनके जो है वो 10 हाथ होते हैं, ये फर्क है नहीं, क्या फर्क बनता है दोनों के दरमियान? इल्म का तो फर्क बनता है, ठीक है। तो अवाम का मसला क्या होता है कि कुछ पता वाता होता नहीं है, वो मफरूजा बना लेता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे कुछ कोई सजा नहीं मिलने वाली, मैं तो बिल्कुल इम्यून हूं, ठीक है ना। उसको पता ही नहीं कि अगर करोगे तो फिर सजा मिलेगी, उसको ये बात नहीं पता। उसको शैतान ने आके कह दिया नहीं, यू आर ग्रेट, उसने मान ली शैतान की बात। हालिम का मसला ये होता है कि शैतान के लिए भी इतना आसान नहीं होता उसको जो है वो बेवकूफ बनाना, ठीक है, यानी बना तो वो उसको भी लेता है, लेकिन उसके पास तो कुरान का या उसके पास तो अपनी किताब का इल्म होता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसको पता होता है कि यह आसमानी किताब है, उसको पता होता है कि जी पिटाई मुझे लगेगी। आवाम बेवकूफ बन जाते हैं, समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। तो ये उलमा थे, तो उलमा थे तो कहते थे लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामा मादूदा, ठीक है। और खुद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का कौल कुरान में मजकूर है कि इन्नहु मैं युश्रिक बिल्लाही फकद हरम अल्लाह अलैहि जन्ना, यानी जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देते हैं, जो बवजह इंतजाम के मिसले इकरारे नसारा के है। कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल था तो ये इकरारे नसारा हुआ कि भाई जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहरा दे तो जन्नत उसके ऊपर हराम। अच्छा, अब इसके ऊपर ना एक तालिब इल्माना सवाल होता है, क्या आयात नकल फरमाए जा रहे हैं हजरात? एक तो उन्होंने नकल करी थी जो बाकी उन्होंने नहीं देखी होगी, कि मकर व मकर अल्लाह खैर उम्मत, नहीं तो वो कुरान मजीद के अल्फाज से ना, उर्दू जबान में ऑफकोर्स हम मकर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि पॉइंट आउट भी किया। बाकी दूसरी आयत आपने क्या लिख दी यहाँ पे, अमन हुआ पाने तुम काना अल्लैल सजू कायमन यहजुरुल आखिर व यरजुल हल यस्तवी लजीन यालमून व लजीन ला यालमून इन्नमा यतदब्बरू उलुल अलबाब। जी, आयत तो ये है हल यस्तवी लजीन यालमून व लजीन ला यालमून, आपने शायद इसी वजह से यहाँ पे नकल किया है। तो इसका मतलब कि भाई जो इल्म वाला होता है और जो बेइल्म होता है वो बराबर नहीं हो सकते, बट डिपेंड्स ऑन वेर यू आर लुकिंग एट दिस आयत फ्रॉम, कहाँ से आप देख रहे हैं ना इसको। तो अवाम को इस आयत को इस नजर से देखना चाहिए कि उनका दर्जा हमसे बुलंद है, नहीं? वो हमसे आला हैं, अफजल हैं, अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया दीनी उलूम के लिए और हमें पसंद किया दुनियावी उलूम के लिए, ठीक है। तो उनका दर्जा हमसे बहुत बुलंद है, जिस तरह दीनी उलूम दुनियावी उलूम के मुकाबले में बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं, उसी तरह उनके हामिलीन हमसे बहुत बुलंद, ठीक है। और जिनको ये इल्म मिल जाए, दीनी उलूम मिल जाए, उनको इस आयत को किस नजर से देखना चाहिए? जिनको दीनी उलूम मिल जाए उनको इस आयत को किस नजर से देखना चाहिए कि अगर हमने गड़बड़ करी तो हमारी पिटाई भी ज्यादा होगी। जो बेइल्म है पिटाई तो उनकी भी होगी गड़बड़ करने के ऊपर, लेकिन उनकी कम होगी हमारी ज्यादा होगी। तो बात एक ही होती है लेकिन देखने का रुख फिर मुख्तलिफ होता है ना। बंदा अपने रुख से उसको देखता है और देखना चाहिए भी। तो ये जो दो आयात यहाँ पे लिखी है, तो ये दोनों आयात तो कुरान मजीद के अंदर है। ये तौरात की तो बात नकल नहीं करी अल्लाह ताला ने, इंजील की तो बात यहाँ पे नकल नहीं करी। तो अब कोई कहे कि भाई ये आप जो है वो अपनी ही किताब की बात जो है वो हमारे लिए दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो भाई ये जो कुरान मजीद के अंदर आयात है ना, ये किन के लिए है हिदायत, ये किन के लिए जो है वो फायदे की चीज है। कुरान मजीद में कुछ दलायल तो उनके लिए होते हैं ना कि जो तुम भी इस बात को मानते हो। लेकिन ये जो कॉल है लन तमस्सना नारु इल्ला अय्याम मादूदा, तो ये तो कुरान कोट कर रहा है उनको, यहूदियों को, उसी तरीके से कुरान कोट कर रहा है ईसा अलैहि सलाम को। ठीक है, तो ये ईमान वालों के लिए कि ईमान वाले जो होते हैं ना वो कुरान के ऊपर ऐसा यकीन रखते हैं कि जैसे उन्होंने वाकई यहूदियों को ये कहते हुए सुना, जैसे उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को ये कहते हुए सुना। ये ईमान वालों के लिए, जैसे कि वो हदीस मुबारक का उनका मजमून है ना कि अल्लाह ताला जो है ना वो क्या है, वो एग्जैक्टली हदीस का पूरा तफसील याद नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन के दलील के तौर पर काफिरों के सामने पेश किए जाएंगे तो वो हर चीज का इनकार करते रहेंगे, नहीं 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 हम नहीं मानते उसको, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को उनके खिलाफ दलील के तौर पे पेश करें, तो वो मुसलमानों का भी इनकार कर देंगे कि भाई हम ये कैसे हमारे खिलाफ दलील, ये कैसे हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, इन्होंने तो हमें देखा ही नहीं है सब करते हुए, इन्होंने तो हमें देखा ही नहीं है, तो बाद में आए थे दुनिया के अंदर। तो मुसलमान जवाब देंगे कि हमने अपने नबी से ये बातें सुनी थी और हमें अपने नबी की बात के ऊपर अपनी आंखों से भी ज्यादा एतमाद है। हमने आंखों से नहीं देखा इन लोगों को, हमने अपने कानों से इन लोगों की बातें नहीं सुनी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से सुना था, तो हाँ अंबिया के हक में गवाही देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो तो अपने अंबिया का इनकार कर देंगे ना, वो पहले भी इनकार कर रहे थे, बाद में भी कयामत के दिन भी इनकार कर देंगे। वो बचपन के गुनाह बचपन में भी जान नहीं छोड़ते, उसी तरह दुनिया के जो गुनाह होते हैं ना, दुनिया की जो बुरी आदतें होती हैं वो आखिरत में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो डिनाइल का, जिसकी आदत दुनिया में होती है ना अपनी गलतियों को डिनाई करना, दूसरे के ऊपर हर वक्त फिंगर पॉइंटिंग करना, वो कयामत के दिन भी यही कर रहा होगा, जिस तरह बनी इसराइल कयामत के दिन भी फिंगर पॉइंटिंग कर रहे होंगे, अम्बिया का कसूर है, अम्बिया का कसूर है। तो अम्बिया के हक में गवाही अल्लाह ताला फिर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलवाएंगे। तो वो कहेंगे इन्होंने तो हमें देखा ही नहीं, ये कैसे गवाही, नहीं हमने नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनी थी, वो हमारे लिए सच थी, हमें अपनी आंखों पर एतमाद नहीं है, हमें नबी की बात पर एतमाद। ये होता है ईमान। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फरमाया कि भाई मैं युश्रिक बिल्लाह फकत हरम अल्लाह अलैहि जन्ना इन्नहु मैं युश्रिक, तो ये ईमान वाले के लिए पक्की ढक्की बात कि वाकई ईसा अलैहि सलाम ने ऐसा ही कहा। हाँ माशाल्लाह, फकई फायदा जेना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीद, इसकी तफसीर में सारा बात है। अच्छा, खुलासा ये है कि आखिरत के अजाब का जब तुम्हें खुद भी इकरार है तो ये बताओ कि क्या कोई बाप अपने बेटे या महबूब को अजाब भी दिया करता है। कि तुम कह रहे हो ना कि अजाब मिलेगा हमें थोड़े दिन के लिए अजाब मिलेगा, तो बेटे और महबूब को अजाब भी देता है कोई, तुम तो अपने आप को महबूब भी कह रहे हो ना, महबूब को अजाब क्यों। इसलिए अपने आप को खुदा की औलाद कहना बातिल, यानी तुमने जो अपने आप को खुदा का महबूब कहा हुआ है ना, खुदा की औलाद से उनकी मुराद भी खुदा का महबूब था, ये बातिल है भाई, तुम कोई महबूब महबूब नहीं। यहां ये शुबा नहीं किया जा सकता कि बाज औकात बाप भी अपनी औलाद की इसलाह और तरबियत के लिए तादीबन सजा देता है, तो सजा होना बेटा होने के मुनाफी नहीं है। ठीक है, यानी बाप सजा देते हैं तो भाई वो अदब सिखाने के लिए सजा देते हैं, तादीबन का मतलब होता है अदब सिखाना, क्योंकि बाप की सजा तादीब के लिए होती है ताकि वो आइंदा ऐसा काम ना करे, और आखिरत में तादीब का कोई मकाम नहीं है। ठीक है, यानी खास बाप बेटे के दरमियान जो ये सदा वाला सिलसिला चल रहा होता है ना, ये तादीब के लिए, क्योंकि बाप बेटे से मोहब्बत करता है, वो उसको अदब सिखाने के लिए कभी उसको सजा भी दे देता है। आखिरत में तादीब कोई मकाम ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तो दारुल अमल है ही नहीं, वो तो दारुल जजा है। ठीक है, वो तो दारुल जजा है ना, दारुल अमल कोई थोड़ी है कि वहां पर गलती करी तो अब जो है ना वो तादीबन सजा दे करके आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। भाई वहां पे तो अब अमल खत्म हो गया, तो वहां पे कोई थोड़ी तादीबन, वहां आगे कोई काम करने या किसी काम से रोकने का कोई एहतमाल नहीं है जिसको तादीब कहा जाए। इसलिए वहां जो सजा होगी वो खालिस सजा और ताजीब ही हो सकती है। ताजीब मतलब अजाब देना ही हो सकता है जो औलाद या महबूब होने के कतअन मनाफी है। इसलिए मालूम हुआ कि तुम्हारी कोई खसूसियत अल्लाह ताला के यहाँ नहीं। अब इसके ऊपर जो है ना वो एक तालिबे इल्माना सवाल ये भी पैदा होता है कि हमें ये पता चलता है हदीसे मुबारका से भी कि सही पता चलता है कि मुसलमान जो है वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। कुछ मुसलमान ऐसे भी होंगे जो कि जहन्नुम के सबसे ऊपर वाले दर्जे के ऊपर डाल के अंदर डाले जाएंगे, तो वहां पे तो उनको अजाब हो रहा होगा। जहन्नुम तो अजाब के लिए बनाई गई है, तो अजाब हो रहा होगा। ठीक है, तो बेशक मुसलमान तो अपने आप को अल्लाह का बेटा कहते भी नहीं, लेकिन अल्लाह का महबूब तो कहते हैं ना। भाई हाँ भाई, अल्लाह ताला की मोहब्बत ईमान की वजह से, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो हर ईमान वाले को हासिल होती है। अब उसको जहन्नुम में क्यों डाला जाए? अच्छा एक मिनट, इससे पहले उनका जो एक मैसेज आया हुआ है कि ये बात भी वही कह सकेंगे जो इस जिंदगी में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अपनी आंख और तालीम वगैरह से ज्यादा ईमान रखते हैं, ज्यादा एतमाद अपनी आंख से ज्यादा एतमाद करते हैं और अपने तालीमी इदारों और अपने निसाब की किताबों से ज्यादा ईमान रखते हैं। जाहिर सी बात है, बचपन की जो आदतें होती हैं वो बचपन में कहाँ खत्म होती हैं। बचपन यानी दुनिया के अंदर जो अकीदा आपका बन गया कि मेरी आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी आंख जो है वो ज्यादा रिलायबल है, और मैंने जो अपने टीचर से यूनिवर्सिटी में सुना है वो ज्यादा रिलायबल है, और कुरान और हदीस जो है वो उससे लेस दर्जे के रिलायबल है या नहीं है रिलायबल, तो मरने के बाद जो है वो कहाँ से उसका अकीदा चेंज होता है? दुनिया में अगर तौबा कर ली तब चेंज हुआ ना, मरने के बाद ये अकीदा कहाँ से चेंज हो जाएगा? तो फिर वो कयामत के दिन भी ये लोग कहाँ से फिर इस चीज का इकरार करेंगे? मुस्लिम्स आर गिवन पनिशमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ देयर बैड। ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने, नौजवान साथी हैं हमारे, इन्होंने आगे से बात पहले कर दी कि मुसलमानों को जो वहां पर जहन्नुम के अंदर जो किया जा रहा होगा ना वो तज़किया होता है, तज़किया। ठीक है, वो अजाब नहीं होता, वो तज़किया होता है। तज़किया क्यों होता है? क्योंकि अब उनको जन्नत में डाले जाना है, और जन्नत में जो है वो गुनाहों की नजासत के साथ जा करके जन्नत को भी खराब करना है क्या? जन्नत को खराब करने की इजाजत नहीं है, और ना अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरी जन्नत को जो है वो गुनाहों के साथ जाकर के खराब किया जाए। तो जन्नत में जाने से पहले पहले जो है ना वो सारी सेटिंग कर दी जाएगी और तज़किया कर दिया जाएगा। वो तज़किया की नेचर ऐसी है, तज़किया की नेचर, बाय नेचर तज़किया मीन्स निचोड़ना, और तकलीफ होती है तज़किया से। ठीक है ना, आप किसी कपड़े का भी तज़किया करते हैं ना तो उसको निचोड़ना पड़ता है, तो अगर कपड़ा रूह वाला होता तो उसको तकलीफ हो रही होती ना। ठीक है, तो वो तो तज़किये के लिए है, और वो भी तज़किया भी क्यों? क्योंकि भाई वाकई ईमान वाला ना है, नहीं नबी अलैहिस्सलाम पे एतमाद करने वाला वो अल्लाह ताला का महबूब होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो जहन्नुम में जो डाला जाएगा सारी इसलिए डाला जाएगा। ये तो फिर अजाब की बात करते थे ना, तो अजाब और महबूबियत जो है ना ये दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब हम जो बात अक्सर कर लेते हैं तो हम उर्दू जुबान के एतबार से अजाब का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो उर्दू की बुनियाद पर होता है कि भाई मुसलमानों को जो है वो जहन्नुम में अजाब दिया जाएगा, लेकिन हकीकत जो है ना वो कुरान मजीद से भी तज़किये का लफ्ज ही, ठीक है, वो अजाब बमानी तज़किया, नॉट अजाब बमानी ताजी। अच्छा आखिरी जो बात है वो करके बस आज की क्लास खत्म करते हैं कि बल्कि तुम भी मिन जुमला दूसरी मखलूकात के एक मामूली आदमी हो। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे बख्शेंगे, जिसको चाहेंगे सजा देंगे, और अल्लाह ही की है सब हुकूमत आसमानों में भी और जमीन में भी और जो कुछ उनके दरमियान उनमें भी, और अल्लाह ही की तरफ सबको
लौट कर जाना है, उसके सिवा कोई पनाह नहीं है। ठीक है, तो खामखा इस तरह की ब्रैगिंग करने, इसको ब्रैगिंग करना कहते हैं, नखनु अबनाउल्लाही व अहिब्बाउहु, अंग्रेजी जुबान में इसको ब्रैग करना कहते हैं, यानी बड़कियां मारना, उर्दू में जिसको कहते हैं अपने बारे में बड़कियां मारना, मैं तो ये हूं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, बड़कियां मारना, मारना जो है ना, ये ईमान वाले का फेल है। ये जिसको हकीकत समझ में आ जाती है ना, अपनी भी और अल्लाह की भी, वो बड़कियां नहीं मार सकती। इसी वजह से हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह, उनका कॉल जो है वो दज्जाल वाली किताब नहीं पढ़नी चाहिए, दज्जाल वाली किताब है आजकल, अगर समझना चाहिए उनको, से सीखना चाहिए, कोई नहीं वो मिंबर पे नहीं बताया कि कोई आपको दज्जाल के बारे में आजकल। तो क्या फरमाया था कि ये तसव्वुफ के खिलाफ है। हाँ, गया वो बॉल, मैंने भी तो कल ही देखा था। ये जो क्लेम्स करना है ना अपने बारे में, ये तो तसव्वुफ के खिलाफ है, ये तो शिर्क है। मुझे के जुड़ता था उसे, खैर बहरा, तो ये जो कर रहे थे बनी इसराइल, इस तरह की बात है। तो नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है। दावा, दावा, ये दावे जो है ना, ये मुसलमानों को देनी है, इमाम मेहदी भी आकर के कोई दावा शावा नहीं करें। एक बात जहन में थी वो याद थी, हाँ, कि अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे बख्शेंगे, ये जो फरमाया ना, यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, ठीक है, जिसको अल्लाह चाहता है उसको अल्लाह ताला बचता है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको अल्लाह ताला अजाब देता है। तो अब इसके ऊपर आज का दौर, चूंकि इल्म से दूरी, उलमा से दूरी, मशायख से दूरी, और जो है वो किताबें पढ़ पढ़ करके अपनी तरफ से जो है ना, वो कुरान को भी समझ रहे हैं और दीन को भी समझ रहे हैं, तो जाहिर है फिर उस्ताद कौन होता है? हजरत शैतान है, हजरत शैतान उस्ताद होते हैं, हजरत शैतान ही जो है वो शेख होते हैं, नऊज बिल्ला, ठीक है ना। किताब तो पढ़ रहा होता है कुरान, लेकिन उस्ताद कौन होता है? शैतान, ठीक है। तो फिर वो दिल में डालता है कि अल्लाह ताला चाहेंगे हिंदू को भी बख्श देंगे, अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो यहूदी को भी बख्श देंगे, अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो बुद्ध मत को भी बख्श देंगे, अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो किसी को भी बख्श देंगे। देखो कुरान में लिखा हुआ है, यग़फ़िरु लिमन यशाउ वा युअज़्ज़िबु मन यशाउ, भाई अल्लाह ताला ने अपनी चाहत बता दी है, अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को नहीं बख्शेंगे, ठीक है। तो अब अल्फाज की बुनियाद पर कुरान को समझोगे या तर्जुमे की बुनियाद पर कुरान को समझोगे, तो शैतान ने ना फिर काफिर ही बना के छोड़ना है, उससे कम पे शैतान राजी वैसे भी नहीं होता, काफिर बनाने पे राजी होता है, खुश होता है। बहरहाल बाकी बात इंशाल्लाह हम तौफीक हो तो अगली क्लास के अंदर करेंगे, बता समझ हम सबको मन की तौफीक अता फरमाए, वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।